ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। पिछले 4 डेज से आप नॉलेज से तो भरपूर हो गए, फिर भी आज कुछ और ज्ञान की बातें करेंगे। एक सवाल जो कई लोग हमसे पूछते हैं और कई बीके के मन में भी पैदा होते हैं कि दादियों ने इतनी तपस्या की फिर भी इनको बीमारी क्यों आती है। अगर कोई बीके भाई बहन बीमार हो जाता है तो बाहर के लोग भी कहते हैं कि आपका खान पान शुद्ध है, रहन सहन सब कुछ शुद्ध है, फिर भी आपको बीमारी क्यों आती है। तो वास्तव में इसका उत्तर संपूर्ण सृष्टि चक्र के ज्ञान में समाया है। सबसे पहले पहले जो आत्माएं रंगमंच पर उतर करके आती हैं और बहुत लंबे समय तक रंगमंच के ऊपर रोल प्ले करती हैं, एक तरफ तो हम उनको रखें और दूसरी तरफ हम उनको रखें जो अभी अभी उतर के आई हैं, जिनका एक जन्म है या दो जन्म है या 5 जन्म है। तो जरूरी बात है कि जो लंबे समय तक रंगमंच पे रहेगा, कर्म करेगा, तो थोड़े बहुत कर्मों के हिसाब किताब उसके ज्यादा होंगे। एक व्यक्ति 100 साल से व्यापार कर रहा है तो उसके कितने बही खाते होंगे, और जो केवल 5 साल से ही व्यापार कर रहा है उसके कितने बही खाते होंगे, समझ में तो आता है। तो इसलिए एक कारण तो ये है कि हमारा रंगमंच पे लंबे समय से पाठ रहा है। दूसरा कारण ये भी है कि जो शुरू में रोल प्ले करता है और उसको देखकर दूसरे लोग अगर कोई भी बात सीखते हैं, अगर अच्छी बात सीखते हैं तो अच्छाई का भी कमीशन मिलता है, और अगर बुरी बात सीखते हैं तो बुरी बात का भी कमीशन मिलता है। तो शुरू में गिरे कौन? देवता धर्म वाले गिरे, और उन गिरे हुओं को देख करके बाकी जो ऊपर से उतरी हुई आत्माएं हैं उन्होंने उनको फॉलो किया। तो इसलिए फॉलो करने वालों का भी कमीशन थोड़ा बहुत तो बड़ों को, पूर्वजों को मिलेगा ही। इसलिए हमारी इस रंगमंच पर लंबी दौड़ है, हमारे हिसाब किताब अधिक है, इसलिए इस अंतिम जन्म में अधिक पुरुषार्थ करके हम उन्हें चुप्तु करते हैं। हाँ, इतना फर्क है कि जिसको ज्ञान नहीं है उसको अगर बीमारी आती है तो वो दुखी होता है, लेकिन ज्ञान वाले को बीमारी आती है तो बाहर वालों को दिखती है लेकिन वो खुद दुखी नहीं होता। जैसे जगदीश भाई को भी बीमारी आई तो वो कहते थे कि बाबा ने मुझे कहा है कि बच्चे मैं आपको दर्द नहीं होने दूंगा। तो भले वो इतने बीमार थे लेकिन इतनी बीमारी में जैसे आम लोग दर्द से परेशान हो जाते हैं ऐसा उनको कभी नहीं देखा गया। बाबा उनकी सहनशीलता बढ़ाता है और दर्द से भी उन्हें मुक्त करता है भले शरीर बीमार हो। दूसरा, कई बार कई भाई बहनों के मन में भी सवाल आता है कि मैं ही बीमार क्यों हूँ, सब स्वस्थ हैं, ये बीमारी मुझे क्यों है। दूसरे भी कह देते हैं अरे आप तो इतनी छोटी आयु है आपकी, तो आपको ये तकलीफ क्यों है। तो वास्तव में हमारे पास जो 3 चीजें हैं, देह, देह के संबंध और देह के पदार्थ, ये तीनों चीजें हमको प्रकृति से मिले हैं। जब हम परम धाम से आते हैं तब तो एक छोटी सी आत्मा आते हैं, नीचे आने के बाद ये उदार प्रकृति हमको शरीर देती है, संबंध देती है, पदार्थ देती है, और इन तीनों की बड़ी गुह्य गति है। जैसे शरीर के मिलने की भी गुह्य गति है, किस घर में देह मिलेगी, किस शहर में देह मिलेगी, कैसी मिलेगी, कुरूप या सुंदर, स्वस्थ या अस्वस्थ, ये सब भी आत्मा के कर्मों पे आधारित है। लौकिक दुनिया के हिसाब से हम एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करेंगे। कई बार हम देखते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है और जन्म लेते ही आंखें बंद कर लेता है। घर के लोग बहुत दुखी होते हैं कि हमको तो बड़ी आस थी हमारे घर में बच्चा आएगा और ये क्या हुआ, भगवान ये हमें किस पाप कर्म की सजा मिली जो हमारा बच्चा वापस ले लिया। लेकिन वास्तव में ये घर वालों की तो थोड़ी बहुत सजा है सो है, लेकिन ये सजा उस आत्मा की है। कैसे, मान लीजिए किसी ने 40 लोगों का मर्डर कर दिया। अब जो फांसी की सजा होती है वो एक मर्डर पे एक फांसी ऐसे होती है, तो एक मर्डर की एक फांसी की सजा तो उसको मिल गई इस दुनिया में, लेकिन जो 39 मर्डर बचे उनका क्या होगा, उनकी सजा कैसी मिलेगी। तो लौकिक गवर्नमेंट एक फांसी देके फ्री हो गई, आगे उसका कोई जोर नहीं चलता, लेकिन जो सूक्ष्म कर्मों की गहन गति है उसके अनुसार उस आत्मा को अभी 39 बार गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा, और जैसे ही वो आंख खोलेगी फिर से उसका जीवन चला जाएगा, वो फिर जाके उल्टा लटकेगी, फिर आंख खोलेगी, फिर जाके उल्टा लटकेगी। अर्थात जब तक उसकी वो सजा पूरी नहीं होगी तब तक उसको जीवन नहीं मिलेगा, और जिस घर में वो आया है उस घर के लोगों का या उसके पेरेंट्स का उनका भी कहीं ना कहीं किसी क्राइम में किसी अपराध में सहयोग है, जिसके कारण उनके घर ऐसा बच्चा आया और फिर चला गया। तो जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उस आत्मा की शक्ति अर्थात बीज की शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उस बीज के चारों ओर कितने भी पौष्टिक तत्व हों लेकिन वो उनको ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे एक ही जमीन में अपन दो बीज बोई, एक स्वस्थ बीज है और एक कमजोर बीज है, जमीन एक जैसी है। स्वस्थ बीज तो उससे पूरे पोषक तत्व लेगा और पौधा बड़ा होगा, लेकिन जो कमजोर बीज है वो पोषक तत्व खींच ही नहीं पाएगा, इसलिए या तो पौधा बनेगा नहीं, बनेगा तो पीला पीला बनेगा, सूखा बनेगा, छोटा बनेगा। तो इसी तरह से आत्मा बीज है, जब वो पाप कर्म करती है तो वो सुकड़ा हुआ और अविकसित बीज बन जाती है और वो शरीर से पोषक तत्व नहीं ले पाती, इसलिए अपने शरीर का पूर्ण विकास नहीं कर पाती। तो वो शरीर जन्म से ही या तो कमजोर होता है या रोगी होता है या थोड़ा बड़ा होने के बाद उसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, और जो अच्छे कर्म करके आई है वो बीज बड़ा शक्तिशाली है, तो उसने उसी बॉडी से अर्थात माँ रूपी धरती से इतने पोषक तत्व ग्रहण किए कि वो स्वस्थ शरीर बन गया। अब हमारे पिछले कर्म हम में से किसी को भी याद नहीं है, लेकिन ये कर्मों की गहन गति है कि जैसा कर्म वैसा शरीर, जैसा कर्म वैसे संबंध, और जैसा कर्म वैसी संपत्ति, अर्थात ये शरीर कर्म जन्य है। मान लीजिए हम किसी मोबाइल की दुकान पे खड़े हैं और हम कहते हैं कि भाई हमें मोबाइल दे दीजिए, तो दुकानदार पूछता है कितनी रेंज का, हम अपनी जेब देखते हैं, जेब में 1100 रुपए ही हैं, तो हम कहेंगे भाई 1100 के आसपास, 1000 का, 900 का ऐसे दे दो। उसी समय एक दूसरा ग्राहक आया, उसने भी मोबाइल मांगा, दुकानदार पूछता है कितनी रेंज का, वो अपनी जेब देखता है 5000 रुपए ही हैं, वो कहेगा 5000 के आसपास। और एक तीसरा ग्राहक आया, उसने भी मोबाइल मांगा, उससे भी दुकानदार ने वही सवाल पूछा कितनी रेंज का, तो वो कहता है 20000, और उसको 20000 का दे दिया। हमारे देखते देखते एक 20000 वाला ले गया, एक 5000 वाला ले गया, और हमको उसने एक सेकंड हैंड मोबाइल दिया 900 रुपए का, हम कुछ नहीं बोले, चुपचाप ले आए, क्योंकि हमको ज्ञान है, प्रश्न मन में पैदा नहीं हुए। किस बात का ज्ञान है कि जितनी पूंजी वैसी चीज। तो कर्मों की गहन गति भी कहती है जितनी कर्मों की पूंजी वैसी चीज। अगर कर्मों की पूंजी बहुत है तो श्री कृष्ण जैसा शरीर मिलेगा, जिसमें कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं, कोई चीरा नहीं, कोई कांटा नहीं, जिसकी एक एक कर्मेंद्री कमल समान है। और अगर कर्मों की पूंजी कर्मशः कम होती जाती है तो शरीर भी कर्मशः कम सुंदर, कम स्वस्थ होता जाता है। और कलयुग के अंत के शरीर फिर कम सुंदर और कम स्वस्थ। और उसमें भी अगर किसी के कर्मों की पूंजी बहुत ही कम है तो फिर शरीर बिल्कुल ही कम आयु का मिलेगा और कम सुंदर मिलेगा। सुंदर मिल जाएगा लेकिन आयु नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए कहती हैं कि जब कोई बड़ा व्यक्ति कहता है कि जुग जुग जियो, लंबी आयु जियो, तो ये भी व्यक्ति को एक दुआ मिलती है। लेकिन कई लोग ऐसे कर्म करते हैं जिसके कारण सामने वाला क्या कहता है, सामने वाले के मुख से क्या निकलता है, ये तो ना जन्मता तो अच्छा था, ये तो मुआ भला, कई बच्चे ऐसे कर्म करते तो ये भी लगते हैं। तो जिन लोगों ने ऐसे कर्म किए कि उनको दुआएं मिली, जुग जुग जियो, लंबी आयु जियो, उन लोगों की आयु लंबी और शरीर स्वस्थ हो जाता है। और इसके विपरीत अगर हमारे ऐसे कर्म हैं तो उसका इफेक्ट शरीर पे आता है। बाबा ने मुरली में बताया है कि जो हॉस्पिटल बनाते हैं उनको स्वस्थ शरीर मिलता है। अब इतने लोग उसको दुआएं देंगे, उसने बहुत अच्छा काम किया, हमारी बीमारी दूर हो गई, तो वो दुआएं लेके वो जन्मेगा और उसको शरीर स्वस्थ मिलेगा। दूसरा एक प्रश्न होता है कि हमको ऐसे संबंध क्यों मिले, हमको बंधन क्यों है, या हम कम पढ़े क्यों हैं। कई प्रकार के अपने सराउंडिंग के बारे में मन में प्रश्न पैदा होते हैं। एक बार सूर्य भाई ने अपनी क्लास में कहा था कि मान लीजिए कोई स्त्री पति को आश्रम जाने से मना करती है तो इसका कारण ये है कि पिछले जन्म में आपने भी उसको कोई मंदिर में जाने से मना किया होगा। कोई भी किसी को रोक रहा है तो ये पूर्व जन्म का हिसाब हो सकता है। बाकी हमारे जो संबंध वो भी रंगमंचीय संबंध और वो भी कर्मजन्य संबंध है। एक कहानी सुनाती है कि राजा भोज एक बार भोजन कर रहा था और महारानी उनको भोजन करा रही थी, तो राजा भोज इतना खुशी में खा रहे थे, महारानी इतना प्यार से खिला रही थी कि उन्होंने एक चपाती अधिक खाई, फिर एक चपाती और मांगी तो महारानी को हंसी आ गई। तो राजा भोज ने पूछा आप हंस क्यों रही हैं? तो महारानी ने कहा मेरी हंसी का उत्तर यहाँ से 20 कोस पे जो मेरी बहन रहती है ना दूसरे राजा के यहाँ, वो आपको बताएगी, आप वहां चले जाओ। तो राजा भोज को बहुत क्यूरियोसिटी थी, अगले दिन उन्होंने रथ तैयार किया और वो वहां पहुंच गए, उनसे मिले। और जैसे ही उसने राजा को देखा तो उसने पूछा अच्छा आप हंसी का कारण पूछने आए हो, आइए बैठिए मैं आपको बताती हूँ। ऐसे कहके उसने राजा को बिठाया और फिर कहती है कि देखो आज की रात मैं एक राजकुमार को जन्म दूंगी और उसके बाद मेरी डेथ हो जाएगी, और डेथ होने के बाद यहाँ से 40 कोस दूरी पे वो जो एक और राजा है ना, मैं उसके यहाँ कन्या के रूप में जन्मूंगी, और जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी तब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो राजा देखता है सचमुच एक राजकुमार का जन्म हुआ और उस रानी की डेथ हो गई, तो राजा को लगा ये बात तो सच निकली। उसके बाद उसने 40 कोस दूरी पे पता करवाया तो पता पड़ा कि उनके यहाँ एक राजकुमारी का जन्म हुआ, तो राजा को लगा ये भी बात सच्ची है, चलो मैं 20 साल इंतजार कर लेता हूँ, उसके बाद वो जो बताएगी तो जरूर सच्ची बताएगी, जब ये तीन बातें सच्ची हो गई तो। तो 20 साल के बाद वो उस राजकुमारी के पास जाता है और वो कहती है अच्छा आप अपने प्रश्न का उत्तर लेने आ गई, तो सुनो ऐसे कह के कहती है कि कल मेरी शादी है और आपको पता है मेरी शादी किससे होने वाली है, उसी राजकुमार से जिसको मैं जन्म दे के आई थी, पिछले जन्म में मैं उसकी माँ थी और इस जन्म में मैं उसकी पत्नी बनने जा रही हूँ, और आपने जब खाना खाया तो महारानी को हंसी आई, उसका कारण ये है कि पिछले जन्म में आप उसके पुत्र थे और वो जब आपको खाना खिलाती थी तो आप बहुत नखरे करते थे, मुख में डालती थी और आप भाग जाते थे, खिलाती थी और आप मुख से निकाल देते थे, खिलाती थी और आप बहुत चिल्लाते थे, तो जब आपको महारानी खाना खिला रही थी तो उसको वो पिछले जन्म का दृश्य याद आ गया कि ये वही है, तब तो ये खाना खाता नहीं था और आज देखो ये एक के बाद एक चपाती मांग मांग के खा रहा है, तो इसलिए महारानी को हंसी आ गई। तो ये महारानी भी पिछले जन्म की आपकी माँ है, ऐसे उसने बताया। तो वास्तव में ये जो सृष्टि है ये एक ड्रामा है और इस ड्रामा में कोई भी किसी का कुछ भी नहीं है, जैसे लौकिक दुनिया की फिल्में उसमें आप देखते हैं रामायण में एक बहन ने सीता का रोल प्ले किया था, क्या नाम था उसका, शायद दीपिका नाम था, तो जब उसने सीता का रोल प्ले किया तो उसने ऐसा रोल प्ले किया जैसे सचमुच ये सीता ही है, और मैंने भी उसको देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत सात्विक बहन है, बहुत अच्छी बहन है, लेकिन थोड़े दिन के बाद मैंने उसको टीपू सुल्तान के सीरियल में देखा, वो हैदर अली एक मुस्लिम बादशाह की पत्नी बनी है और टीपू सुल्तान की माँ, और जैसे ही हैदर अली की डेथ होती है वो फूट फूट के रोती है। अब आप बताइए वो कौन है, वो सीता है या टीपू सुल्तान की माँ है, दोनों में से कौन है, वो कौन है, कोई भी नहीं, ना वो सीता है ना वो टीपू सुल्तान की माँ है, दोनों ही उसके रोल है, तो फिर वो कौन है, अगर इस जन्म के हिसाब से माना जाए तो वो दीपिका है, और अगर शरीर के हिसाब से ना समझा जाए तो वो एक आत्मा है, बाकी तो उसके रोल है। और ये तो मैं तो केवल दो ही रोल जानती हूँ, अगर उसने और भी फिल्मों में रोल प्ले किए हो तो पता नहीं वो कहीं बोधी बनेगी, कहीं क्रिश्चियन बनेगी, फिर कहीं हिंदू बनेगी, फिर कहीं मेल बनेगी, कहीं माँ बनेगी, कहीं बेटी बनेगी, कुछ भी बनेगी, हजारों हजार रोल प्ले करता है एक एक्टर, लेकिन वास्तव में तो वो वही है जो है। तो हम भी पता नहीं कितने रोल प्ले करते हैं लेकिन वास्तव में तो हम आत्मा हैं। लेकिन होता क्या है कि जब हम इस रंगमंच पर आते हैं, तो जब कोई भी रंगमंच पर आता है तो उसका मेकअप होता है, मान लो आपको तीन बहनों को, एक को झांसी की रानी, एक को इंदिरा गांधी और एक को मदर टेरेसा बनाना है, तो आप क्या करेंगे, रंगमंच पे बुला के उनका मेकअप करेंगे और ऐसा मेकअप करेंगे कि उनके घर के लोग भी अगर ड्रामा देख रही हैं तो वो पहचान नहीं पाएंगे कि इनमें से हमारी वाली बेटी कौन है। मेकअप की कमाल तो यही है जो पूरा रंग रूप बदल दे। तो जब हम भी परम धाम से इस रंगमंच पर आते हैं तो जो ड्रामा का डायरेक्टर है वो कहता है कि मुझे इनका मेकअप करना है, मेकअप के बिना मैं इन्हें ड्रामा में रोल नहीं दूंगा, और मेकअप करने में उसको सहयोग चाहिए क्योंकि डायरेक्टर खुद मेकअप करने बैठे तो कितनों का करेगा, बहुत सारे एक्टर हैं। तो वो इस प्रकृति को कहता है कि तुम इनका मेकअप करो मेरी सहयोगी बन करके, मैं आउटलाइन दे देता हूँ, इसको ऐसा बनाना है, इसको ऐसा बनाना है, बनाना तुमको है। और जो मेकअप होता है वो हमेशा बंद कमरे में होता है, कभी भी आते जाते लोगों के बीच में मेकअप नहीं होता, लोग डिस्टर्ब करेंगे, कोई कहेगा आंख ऐसी बनाओ, कोई कहेगा अरे नाक तो अच्छी बनी ही नहीं। तो वो ऐसी शांत जगह में किया जाता है जो कोई देखे नहीं। तो जैसे ही हम परम धाम से आते हैं, प्रकृति अपना काम चालू कर देती है, अंधेरी कोठरी में मेकअप करना चालू कर देती है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, वो केवल डायरेक्टर की बात सुनती है और उसका मेकअप कर देती है। और मेकअप करने के बाद हम ऐसे बदल जाते हैं, ऐसे बदल जाते हैं कि जो भी ऊपर से आता है वो हमें भाई मानने को ही तैयार नहीं, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये कभी ऊपर भी बैठा था और हम कभी इकट्ठे भी थे और कभी हम एक घर में भी थे और हम भाई भाई। तो वो जो मेकअप है वो सबको भ्रम में डाल देता है। मदर टेरेसा सोचती है, बेशक वो सगी तीनों बहने ही हो, लेकिन मदर टेरेसा सोचती है मैं क्रिश्चियन हूँ, इंदिरा गांधी सोचती है मैं हिंदू हूँ, और झांसी की रानी सोचती है मैं वीरांगना हूँ। वो तीनों ही एक दो को भ्रम की दृष्टि से देखती हैं, क्योंकि मेकअप से पार वो देख नहीं पाती और मेकअप के आधार पे भिन्नता आ जाती है। इसलिए ये सारा का सारा रंगमंच इस मेकअप से भ्रमित, हम सब इस मेकअप से भ्रमित, हम व्यक्ति को उसके मेकअप के आधार पे जानते हैं। मेकअप उतार देने के बाद जो उसका असली रूप है उस रूप में तो हम जानते ही नहीं थे, और यही परिणाम निकला कि किसी को हमने अपना माना, किसी को पराया माना, किसी से नफरत हो गई, किसी से राग, किसी से वैराग, और इस प्रकार से 84 जन्म रोल प्ले करते करते हम राग द्वेष अपना पराया इन सब चीजों से भर गए। और जब संगम युग पर आए तो एकदम अल्यूजन खत्म हुआ, अरे ये क्या, ये तो सब आत्मा ही है, ये तो सब भाई भाई हैं, हम तो एक घर के वासी हैं, एक पिता के बच्चे। लेकिन इतने जन्मों की वो जो मेकअप को देखने की आदत है वो तो धीरे धीरे छूटती है, फिर मेकअप दिख जाता है और फिर असली पहचान भूल जाती है। हम कौन किसका साथी बनता है, क्यों बनता है, ये भी डायरेक्टर पे डिपेंड करता है। अब जैसे मान लीजिए रामलीला चल रही है और रामलीला का जो रचयिता है उसको एक राम चाहिए, तो वो क्या करेगा, किसी भी गरीब लड़के को पकड़ेगा जिसकी थोड़ी शक्ल अच्छी है और उसको कहेगा भाई तुम राम बनोगे, 15 दिन रामलीला चलेगी, एक दिन में 4 घंटा चलेगी, तुम राम बनोगे, हर रोज का तुमको 500 रुपया मिलेगा। अब वो बेरोजगार है तो सोचता है ठीक है राम बना दिया। एक ऐसी गरीब सी लड़की को पकड़ा, उसकी भी थोड़ी शक्ल ठीक है, भाई तुम सीता बनोगी, रोज 4 घंटे रामलीला चलेगी, 15 दिन चलेगी, उसने भी हाँ कर दी। अब दोनों को उसने मंच पे बिठा दिया, सामने वाली सभा क्या सोच रही है कि ये राम है और ये सीता है और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वास्तव में ना वो हस्बैंड है ना वो वाइफ है, ये तो केवल पैसे कमाने का एक जरिया है, ये तो रामलीला को आगे बढ़ाने के लिए दो प्लेयर हैं, एक्टर। अब 4 घंटे जब तक वो रंगमंच पे हैं, तब तक उनकी बातचीत से ऐसे लगता है कि हस्बैंड वाइफ है, वो एक्टिंग कर रही है, असल में नहीं। और जैसे ही वो रंगमंच से उतरेंगे तो सीता क्या करेगी, राम के साथ जाएगी क्या, अपने घर जाएगी, उसके बाल बच्चे इंतजार कर रहे हैं 4 घंटे के बाद हमारी माँ आएगी, और राम कहाँ जाएगा, अपने घर जाएगा, उसकी बूढ़ी माँ भी इंतजार कर रही है 4 घंटे के बाद मेरा बेटा आएगा। तो असल में इस सृष्टि रंगमंच के ऊपर भी जो आत्माएं पति पत्नी का रोल प्ले कर रही हैं, भाई बहन का रोल प्ले कर रही हैं, माता पिता का रोल प्ले कर रही हैं, वो भी इसी प्रकार से टेम्परेरी रोल है, केवल इस एक एपिसोड का, एक जन्म का रोल है। आजकल तो एक जन्म में भी बदल जाता है, लेकिन मान लीजिए एक जन्म का रोल है। मान लीजिए कि सीता बीमार हो गई और वो अगले दिन नहीं आई, तो ये चिंता किसको है कि सीता की सीट खाली पड़ी है? ये राम की चिंता है कि डायरेक्टर की चिंता है? डायरेक्टर की चिंता है, राम को क्या चिंता है? उसको तो अगले दिन भी अपने 500 रुपए मिलने हैं, वो अपना रोल प्ले करे। सीता की सीट खाली है कि भरी हुई है कि सीता बदल गई, इससे उसको क्या लेना देना? लेकिन मान लीजिए उनकी रंगमंच पे अटैचमेंट हो जाए दोनों की, और सीता बीमार हो और वो ना आए, तो राम का क्या होगा? राम तो चिल्लाएगा, और फिर निर्देशक क्या कहेगा? निर्देशक कहेगा ये तो एक्टर नहीं है, ये ठीक रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसको रिजेक्ट करो, अगली बार इसको राजा का पद देना ही नहीं है, क्योंकि इसकी तो अटैचमेंट हो गई। अरे एक एक्टर की अटैचमेंट कैसी, उसको तो अपना रोल प्ले करना है। तो जो लोग अपने रोल को डिटैचमेंट के साथ प्ले करते हैं, उनको इस रंगमंच के ऊपर ऊंचा ओहदा मिलता है। हर जन्म में भी, और जो रोल में अटैच होकर के एपिसोड को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो डायरेक्टर समझ लेता है कि ये थोड़ा सा कम क्वालिफिकेशन वाला एक्टर है, अगली बार इसको साधारण सा रोल देंगे जो लोगों के ज्यादा निगाहों में ना आए। अटैचमेंट अगर कर भी ले तो ड्रामा या नाटक बिगड़े नहीं। तो इन 84 जन्मों में भी हमारा रोल कैसा रहा, हमने किस भावना के साथ उसको प्ले किया, उसके आधार पर हमको रोल मिलते आए हैं। द्वापर में भी तो बड़े बड़े राजा हुए, और द्वापर में भी तो साधारण प्रजा हुई, द्वापर में बड़े बड़े योद्धा हुए, बड़े बड़े ऋषि हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, वो कौन हुए? जिनका रोल बहुत अच्छा था उनको द्वापर में भी ऊंचा रोल मिला, जो डिटैच होके प्ले कर रहे थे। कलयुग में भी उनको ऊंचा रोल मिला, लेकिन जिनके रोल प्ले करने की कैपेसिटी थोड़ी कम थी उनको साधारण रोल मिल गए। इसलिए हम सब इस रंगमंच के ऊपर पाठधारी हैं, और जो मेरे संबंधी हैं वो सब के सब निर्देशक के निर्देशन के अनुसार मेरे साथ हैं, मेरी इच्छा के अनुसार मेरे साथ नहीं कोई भी। उनमें से किसी भी व्यक्ति का चुनाव मैंने नहीं किया। मेरे बाद मेरे घर में मेरा भाई आया, मेरे से किसी ने पूछा क्या कि कैसा भाई भेजे? भाई क्यों क्यों पूछे मेरे से? वो डायरेक्टर जानता है कि यहाँ किसको फिट करना है। मेरी बहन आई मेरे बाद, किसी ने पूछा कि तुमको कैसी बहन चाहिए? नहीं, जिसको फिट करना था अपनी मर्जी से फिट कर दिया गया। और मैं जिस घर में जन्मा, तो मेरे से किसी ने पूछा कि तुमको कैसी माँ चाहिए? हाँ, ये कर्मों के हिसाब है, इसकी भी सूक्ष्म मशीनरी है। जैसे हमने शरीर के संबंध में बताया, ऐसे ही जब आत्मा देह छोड़ के जाती है तो केवल और केवल अपने कर्म ले जाती है। एक व्यक्ति का बहुत बड़ा कारखाना है, बहुत कमाई है, लेकिन कारखाने में काम करते समय वो वर्कर्स के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसी उसकी फीलिंग्स हैं, सारे दिन में उसके संकल्प कैसे हैं, कितने लोगों करता है, कितनों को सुख देता है, केवल ये चीज उसके साथ जाएगी। कारखाना, उसकी कमाई, उसके नौकर चाकर, उसका बड़ा मकान महल, सब यहीं रह जाएंगे। तो जब कोई भी व्यक्ति जाता है तो ये सूक्ष्म चीजें उसके साथ जाती हैं, चाहे कोई बड़ा सेठ शरीर छोड़े और चाहे कोई गरीब कामगार शरीर छोड़े। तो जब वो आगे जाता है तो एक बार उसकी मुलाकात उस परम ज्योति से होती है, और उसके बाद उस परम ज्योति से जब उसकी मुलाकात होती है, तो उस थोड़ी सी समय की मुलाकात में वो आत्मा खुद डिसाइड करती है कि मुझे कहाँ जाना है। ये बोलचाल का लंबा विस्तार का काम नहीं है, जैसे ही उसके सामने गई, उसे अपने कर्मों का साक्षात्कार हुआ, जमा घटा का पता पड़ा, और जैसी उसकी पूंजी है उसी अनुसार वो उस जगह पर चली जाती है जो उसके अनुकूल है। जैसे नेहरू जन्मा तो गोल्डन स्पून इन माउथ जन्मा, लेकिन उसी दिन कई ऐसे बच्चे भी जन्मे जिनके मुंह में कोई पानी की बूंद डालने वाला भी नहीं था। तो ऐसा क्यों हुआ, ये च्वाइस किसने की कि नेहरू इधर जाएगा और वो बच्चा इधर जाएगा। ये आत्मा अपने कर्म की पूंजी के अनुसार, संस्कार के अनुसार अपने आप अपनी जगह का चुनाव करती है। ये कर्मजन्य रिश्ते हैं। कर्म की पूंजी कितनी है उसके अनुसार आपको माता मिलती है, पिता मिलता है। जिसकी कर्म की पूंजी बहुत है उसको यशोदा जैसी माँ मिल सकती है, जिसकी कर्म की पूंजी कम है वो ऑटोमेटिक सुरपंखा जैसी माँ के पास भी जा सकता है। तो ये कर्मों की पूंजी ऑटोमेटिक काम करती है। और उसके बाद आगे हमारे रिश्ते बनते जाते हैं और बड़े हुए, पति या पत्नी मिले और आगे गए तो बच्चा मिला। तो ये सब वही आत्माएं हैं जिनका लेन देन अभी बाकी था, हिसाब किताब बाकी था, और जिनके ज्यादा हिसाब किताब बाकी हैं वो नजदीकी संबंधी बनते हैं। मान लीजिए पिछला एपिसोड अभी पूरा नहीं हुआ था, डेथ हो गई दोनों की, तो एपिसोड पूरा करने के लिए इकट्ठा जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए वो फिर इकट्ठे जन्मेंगे, चाहे वो कोई भी संबंध बने। और अगर वो प्यार का एपिसोड बाकी था तो उनका आपस में बहुत प्यार होगा, और अगर झगड़ा बाकी था तो वो इकट्ठे होकर के फिर अपना झगड़ा पूरा करेंगे। जैसे ही नजदीक आएंगे झगड़ा शुरू हो जाएगा, भाई एपिसोड बाकी था पूरा तो करना ही। इसलिए हमको कभी भी ये क्यों और क्या का संकल्प पैदा नहीं करना है कि मुझे ऐसा भाई क्यों, ऐसा पिता क्यों, ऐसी बहन क्यों, जो भी है, क्योंकि जो मिला है वो पूरी तरह न्याय के अनुसार मिला है। लेकिन भगवान ने एक मार्जिन दी है। क्या मार्जिन दी है? जैसे बाबा कहते हैं, बच्चे अगर आप अभी पुण्य कर्म करोगे तो अभी ही आपके शरीर को बाबा आयु लंबी कर देगा। और हम देखते हैं यज्ञ में ऐसे बहुत मिसाल, हमारी देहरादून वाली प्रेम बहन थी, उनकी आयु बहुत ही छोटी थी, 17-18 साल, लेकिन वो शायद 2 साल पहले गई हैं। मतलब काफी लंबी आयु बाबा ने उनको दी। दादी निर्मल शांता की आयु भी बहुत छोटी थी, बाबा ने उनको भी आयु का वरदान दिया। कुछ बड़ी दादियों के एग्जाम्पल हमें मालूम है, लेकिन जिनकी हमें मालूम नहीं है ऐसे भी बहुत भाई बहन इस यज्ञ में हैं। तो जब बाबा ने उनके माध्यम से सेवा होती दिखी या उनके पुण्य का खाता बहुत तीव्र गति से बढ़ता देखा, तो जैसे बाबा कहते हैं योग बल से आयु बढ़ती है, तो उनकी आयु इसी जन्म में बढ़ा दी गई और उनके रोग का शमन कर दिया गया इसी जन्म में। जैसे हम देखते हैं कि कंप्यूटर में कई बार रैम कम होती है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा खर्चा करें तो उसकी रैम बढ़ा सकते हैं ना, मदरबोर्ड की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, उसमें एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क डाल सकते हैं। पहले उसकी गति बड़ी स्लो थी, लेकिन हमने थोड़ा पैसा खर्च किया, एक्स्ट्रा डिस्क डाली, तो वो कंप्यूटर नए की तरह से तेज दौड़ने लगा। तो शरीर भले पुराना है, इसमें रोग है, लेकिन जब हम सेवा करते हैं तो बाबा भी क्या करता है, इसी पुराने शरीर की रैम बढ़ा देता है और इसी पुराने कंप्यूटर में एक नई डिस्क लगा देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि कल तक जो बीमार था वो आज स्वस्थ हो गया। कल तक जो सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था, योग का अभ्यास करने से उसका हार्ट ठीक हो गया। कल तक जो बहुत परेशान था कोई और बीमारी से, लेकिन जैसे उसने योग बल बढ़ाया उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो ये प्रत्यक्ष फल भी है और फिर भविष्य का फल भी है। संबंधों में भी ऐसे ही, कोई संबंध बड़ा कटु है लेकिन जैसे ही हम ज्ञान में आते हैं और हमारा पुण्य का खाता बढ़ना चालू होता है, शुभ भावनाएं बढ़ती हैं, तो वो जो संबंध है उस संबंध को हमसे एक ऊर्जा मिलनी चालू होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चालू होती है, परिणाम स्वरूप वो संबंध सुधरना चालू होता है। जैसे हम देखते हैं पिता और पुत्र का पहले बहुत झगड़ा होता था, लेकिन पुत्र ने इतना योग बल कमाया कि पिता पुत्र का सहयोगी बन गया, झगड़ा खत्म हो गया। पहले पति बहुत झगड़ालू था, पत्नी बहुत दुखी थी, लेकिन उसने इतना योग बल कमाया कि सामने वाला व्यक्ति झगड़ालू से सहयोगी हो गया। पहले बच्चे कहना नहीं मानते थे, लेकिन हमने इतना योग बल कमाया, हम बदले तो बाकी सब भी हमें सुख देने लगे। तो ये तुरंत होने वाला परिवर्तन है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अगर काया को सेवा में लगाओगे तो सतयुग में कंचन काया मिलेगी, और सतयुग में जो संबंध मिलेंगे वो बहुत सुखदाई मिलेंगे। मुझे याद करो तो मैं कृष्ण जैसा पुत्र दूंगा, कृष्ण जैसा भाई दूंगा, कृष्ण जैसा पति दूंगा। और बच्चे अपना दिल दर्पण में देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, अर्थात आप सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे तो आप लक्ष्मी के गले में वरमाला डालेंगे। ये बाबा ने अभी से बताया, लेकिन इन सारी चीजों का आधार क्या है? हमारा पुण्य का खाता, हमारे श्रेष्ठ कर्म, महान कर्म, दिव्य कर्म, पवित्र कर्म। तो इन कर्मों की बड़ी गुह्य गति है। हम कैसे समझें कि ये पाप कर्म है और ये पुण्य कर्म है? आज से लगभग 150-200 साल पहले यूरोप में एक प्रोफेट, मान लीजिए, जो पुनर्जन्म की बात बता देता था, ऐसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था अडगर केसी। अडगर केसी के पास ऐसी सिद्धि थी कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेके उसके सामने आता था तो वो बता देता था कि ये समस्या तुम्हारी पूर्व जन्म के इस कर्म के कारण तुमको हुई है। तो उन दिनों इंग्लैंड में एक प्रोफेसर था, बहुत पढ़ा लिखा था, 40 साल तक तो वो लगभग ठीक रहा, लेकिन 40 के बाद उसकी आंखों की ज्योति धीरे धीरे कम होने लगी। और ज्योति इतनी धीरे धीरे कम हुई कि 41-42 तक पहुंचते उसे दिखना बंद हो गया। अब वो पढ़ाए कैसे, कॉलेज में जाए कैसे? तो वो अडगर केसी के पास गया कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ना तो आंखों में कोई ऐसी चीज गिरी और मैं बिल्कुल ठीक था। तो अडगर केसी ने उसका मस्तक देख के उसको उसके पूर्व जन्म की बात बताई, जो हम सबके लिए सीखने की चीज है, कर्म की गुह्य गति का एक राज है। उसने कहा कि पिछले जन्म में आपके जो पूर्वज थे वो एक कबीला बना करके रहते थे और आपके पिताजी उस कबीले के सरदार थे, जंगल एरिया में रहते थे। तो जो राजा था, उस राजा को जब किसी को सजा देनी होती थी तो सजा देने की ड्यूटी आपके पिताजी की थी। जैसे किसी के अपराध के रूप में उस जमाने में हाथ काटना, पांव काट देना, आंखें निकाल देना, इस तरह की सजाएं होती थी आज से लगभग 100-200 साल पहले। तो जब भी किसी अपराधी को इस प्रकार की सजा दी जाती थी तो आपके पिताजी को बुलाया जाता था और वो अपराधी आपके पिताजी के हवाले किया जाता था। आपके पिताजी बड़े दयालु थे और जब उस व्यक्ति के साथ वो ऐसा व्यवहार करते थे तो उनका हृदय दया में डूब जाता था और वो कहते थे, हे प्रभु, मेरी इससे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन मुझे राज आज्ञा का पालन करने के लिए ये करना पड़ता है। फिर आपके पिताजी की डेथ हो गई और ये ड्यूटी आपको मिल गई, लेकिन आप अपने पिताजी की तरह से दयालु नहीं थे। जब आपको राजा बुला करके सजा की ड्यूटी देता था और जब आप उस अपराधी को लेकर के जाते थे तो उस अपराधी को जब पीड़ा होती थी, जब वो तड़पता था, जब वो चिल्लाता था, और उस समय आप उस तड़फ का आनंद लेते थे। जब उसकी आंखें निकलती थी तो आपको बड़ा मजा आता था। ये आपका अपराध बन गया। आपके पिताजी तो न्यूट्रल थे, लेकिन आप उस कर्म को करते हुए न्यूट्रल नहीं रहे, उस कर्म को करते हुए उसमें आपकी आत्मा इन्वॉल्व होती थी। उसकी तड़फ का आप पैशाचिक आनंद लेते थे, राक्षसी आनंद लेते थे। ये जो आपने राक्षसी आनंद लिया, इसका परिणाम है कि आप कर्म के बंधन में बंध गए। आपके पिताजी तो भगवान को याद करते थे उस समय, और आप उस कर्म में बंध जाते थे। इसलिए इस जन्म में आपकी आंखें चली गई। आप कितना भी इलाज करा लो, लेकिन आपकी आंखें गई, ये वापस नहीं लौट सकती। इस प्रकार से उसने कर्म की गति समझाई। तो बाबा भी हमें क्या कहते हैं कि जब आप मन को किसी चीज में उलझा लेते हो, तब आपका हिसाब किताब बनता है। कैमरे में फोटो कब आती है? जब अपन क्लिक करते हैं, कैमरे को अपन यूं ही घुमा रहे हैं तो दृश्य तो दिख रहा है, लेकिन अपन ने क्लिक किया ही नहीं तो कैमरे में एक भी फोटो नहीं आएगी। क्लिक किया तो वो दृश्य कैमरे में आ जाएगा। हम भी किसी चीज को ऐसे देख रहे हैं तो वो हमारे अंदर सेव नहीं होती, लेकिन जैसे ही हमने किसी चीज को देखा और ये भाव आया ये बहुत सुंदर है, तो वो अंदर सेव हो गई। ये बहुत कुरूप है, सेव हो गई। ये मेरी है, सेव हो गई। इससे नफरत है, इसको मैं देखना ही नहीं चाहता, तो नफरत के आधार पे भी वो दृश्य सेव हो गया। प्रेम के आधार पे भी वो दृश्य सेव हो गया। इस प्रकार से हम सुबह से शाम तक बहुत दृश्य देखते हैं, बहुत लोग देखते हैं, बहुत चीजें देखते हैं। अगर किसी चीज को देख करके थोड़ा लालच आए ये मुझे मिलना चाहिए, तो वो भी अंदर सेव हो गया। उस चीज के साथ मेरी अटैचमेंट है, ये मेरा कर्म का बंधन बन गया। कभी ना कभी मुझे वो चीज दोबारा याद आएगी, अरे वो तो मुझे लेनी चाहिए थी, मुझे मिलनी चाहिए थी। कोई व्यक्ति दिखा, उसके प्रति ऐसा भाव आया, मित्रता का या शत्रुता का या आकर्षण का या नफरत का, तो वो भी अंदर सेव हो गया। कभी ना कभी वो भी याद आएगा। अगर बार बार ऐसे भाव हमारे अंदर सेव होते जाएंगे, तो जब भी हम योग में बैठेंगे, वो एक लंबी भीड़ जो अंदर सेव हो गई वो फिर प्रकट होगी, क्योंकि खाली टाइम में वो चीजें प्रकट होती हैं। आपके घर में एल्बम रखी है, आप काम में बिजी हैं तो एल्बम को नहीं देखेंगे, लेकिन जब आप खाली हो जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे लाओ एल्बम देखते हैं। तो जब हम काम में बिजी होते हैं तो हमारी इंद्रियां और मन उस काम में लगा रहता है। किसी को खाना बनाना है, किसी को टिफिन पैक करना है, किसी को फाइल में एंट्री करनी है। लेकिन जैसे ही हम खाली होकर के योग में बैठते हैं, तो इस मन को क्या लगता है कि अब इंद्रियां भी फ्री है, मैं भी फ्री हूं, तो चलो मैं अपनी फाइल खोलता हूं। योग में ही बातें क्यों याद आती हैं? इसलिए कि वो जो हमने सारा दिन में कई दृश्य कलेक्ट किए थे, हमने जो फाइल बनाई थी, तो ये मन अपनी बनाई उस फाइल की ओर दौड़ता है। बनाई तो इसी ने थी, उससे अटैचमेंट भी है, तो वो धीरे धीरे खुलने लगती है। सुबह ये व्यक्ति मिला था, फिर ये मिला था, फिर इसने ये बोला था, फिर इसने ये बोला था, फिर हम लाख कोशिश करते हैं कि ये स्मृतियां ना आए, लेकिन वो फाइल तो अंदर बन गई, तो वो फिर उभरेगी, फिर उभरेगी। इसलिए बाबा ने कहा, इस दुनिया को, दृश्यों को, लोगों को देखो, लेकिन कैमरे की तरह साक्षी पर क्लिक मत करो। देखो और लेट गो कर दो, देखो और लेट गो कर दो, तो आपके भीतर वो फाइल बनेगी नहीं और योग में आपको कोई याद आएगा नहीं। तो ये कर्म बंधन थोड़े थोड़े, जैसे हम रोज गुल्लक में केवल एक रुपया ही डालते, तो कई वर्षों के बाद अगर वो ब्याज लग लग करके लाखों रुपया हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो द्वापर युग से हमने कोई छोटा छोटा ही कर्म किया, लेकिन वो कर्म जमा होते 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 अगर अंतिम जन्म में एक बहुत बड़ी अमाउंट बन गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। अब बाबा ने क्या कहा कि बच्चे, पिछले مسئلے جو جمع ہوئے ہیں وہ تو ختم کرنے ہیں, اور جو آگے کا جیون ہے اس میں بنانے نہیں. کرم بندھن کرم کرتے کرتے بنے ہیں اور کرم کرتے کرتے ہی ختم ہوں گے. اب ہم جو کرم کر رہے ہیں اس کو ہم نام دیتے ہیں سیوا. ہم نے کرم کیا, ایسی سیوا کی کہ اس سے کئی آتمائیں شیو بابا سے جڑی. تو میرا یہ کرم دو کام کرے گا, آگے کے لیے پنیہ کا کھاتا بھی جمع کرے گا اور پچھلا جو کھاتا ہے اس کو تھوڑا کاٹنے میں بھی مدد کرے گا. ویسے تو یہاں ایسا حساب نہیں ہے کہ دو پاپ کی اور دو پنیہ کی تو حساب نل ہو گیا. دو پاپ کا پھل بھی بھوگنا پڑے گا اور دو پنیہ کا پھل بھی الگ سے بھوگنا پڑے گا. لیکن پھر بھی پچھلے یوگ بل سے کٹتے ہیں اور شریشٹھ کرموں سے بھی ان کی انٹینسٹی کچھ نہ کچھ کم ہوتی ہے. اب کرم بندھن کیسے بنتے ہیں جب ہم کرم کرتے ہیں؟ اب جیسے مان لیجئے ہم آفس میں ہیں اور کوئی پی این آتا ہے, میں ہم بہت بیزی ہیں کام میں, بہت ہی کنسنٹریشن کا کام ہے, اور بےچارا بھولا بھلا پی این آتا ہے, کہتا ہے صاحب پانی پیو گے, ٹھنڈا پانی ہے, اور ہمیں غصہ آتا, ہم کہتے ہیں ارے تو نے مجھے ڈسٹرب کر دیا, تیرے کو پتا نہیں ہے میں کتنا کنسنٹریشن کا کام کر رہا ہوں, تو کیا جانے ان پڑھ میرا یہ کتنا ضروری کام ہے, پانی پانی کر کے مجھے ڈسٹرب کر دیا. اب وہ تو شبھ بھاونا سے آیا تھا, اچھی بھاونا سے آیا تھا, پریم سے آیا تھا, لیکن ہم بیجی ہیں یا ہم اتنے بیجی ہیں کہ کسی کے پریم کو بھی نہیں سمجھ پائے, ہم اتنے بیجی ہیں کہ کسی نے ایک اچھی بات کہی تو اس کا پیار سے اتر بھی نہیں دے پائے, یا وہ فائل ہم پہ اتنی زیادہ حاوی ہے, وہ کرم اتنا حاوی ہے کہ ہم رائٹ رونگ کو بھی نہیں سمجھ پائے, تو یہ کیا ہوگا, کیا ہو گیا؟ پی این بےچارا بولے گا تو کچھ نہیں, لیکن من میں تو سوچے گا صاحب کتنے شارٹ ٹیمپر, میں تو پانی پلانے گیا تھا, اتنی دیر ہو گئی تو پھر بھی صاحب نا کیسے بھڑک کے پڑے, تو اس کے من میں سنکلپ چلیں گے اور ہم کام تو کریں گے لیکن کام میں کنسنٹریشن نہیں ہوگی, پھر بھی پی این یاد آئے گا اور چلیے ہم نے فائل پوری کی, ہم نے کام کر بھی لیا, اور اس کے بعد ہم بے شک گھر بھی آ گئے, اور مان لیجئے ہم بھگت ہیں اپنے مندر میں بیٹھے, یا ہم یوگی ہیں دھیان میں بیٹھے, یوگ میں بیٹھے, تو کیا ہوگا؟ یوگ میں بیٹھتے ہی وہ یاد آئے گا, پورا درشیہ یاد آئے گا, اور انتر آتما کہے گی, کیونکہ انتر آتما رائٹ رونگ کو جانتی ہے کہ بےچارے کی غلطی تو نہیں تھی, میں یوں ہی بھڑک پڑا, میں نے یوں ہی ڈانٹ مار دی, یہ تو بڑا بھولا بھالا ہے, روز ہی پانی پلانے آتا ہے, آج بھی آیا تھا, اس کی غلطی نہیں تھی, لیکن آفس میں تو میں اپنے ایگو کے کارن یہ بات نہیں مان پایا, لیکن ابھی جب میں یوگ میں بیٹھوں گا تو اس سمے تو میری انتر آتما مجھے بولے گی کہ بھی تیری غلطی تھی. اور اس پرکار سے اگر میں اب اوپر جانا چاہوں, فرشتہ ستھتی میں جانا چاہوں, اگر میں پرم دھام میں بیج روپ ستھتی میں بننا بیٹھنا چاہوں تو مجھے کون روکے گا وہاں جانے سے؟ میرا کرم, یہ میرا کرم, میرا میرے پاؤں میں ایک رسی ڈالے گا کہ تم اڑو مت, میرے پاؤں میں رسی میرے کرم نے ڈالی, تو یہ کرم میرا بندھن بن گیا, کرم بندھن بن گیا. اگر کوئی بھی کرم کرودھ میں کیا گیا, ایرشیا میں کیا گیا, ایگو میں کیا گیا, جھوٹ بول کے کیا گیا, یا کسی کو دکھ دینے کی بھاونا سے کیا گیا, یا تھوڑا دکھاوے کے بھاو سے کیا گیا, کیسا ہے وہ, تو وہ کرم میرے پاؤں کی رسی بنے گا, مجھے اڑنے نہیں دے گا, فرشتہ نہیں بننے دے گا, بیج روپ نہیں بننے دے گا, وہ مجھے نیچے کھینچے گا, دھرتی پہ ہی رہو تم, میرا حساب ابھی چکتو نہیں ہوا, ابھی تم اڑ کیسے جاؤ گے, ابھی نیچے ہی رہو. تو کوئی ویکتی مجھے کرم میں نہیں باندھتا, میرا ہی کرم مجھے باندھتا ہے. اور مان لیجئے جب وہ پانی پلانے آیا اور اس سمے میں थोड़ा सा अपना ईगो छोड़ के प्यार से कहती है, अरे तुम बहुत अच्छे हो।
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो।
बात कर रहे थे कि मान लीजिए वो पानी लेके आया और हमने उसको कहा, अरे तुम तो बड़े अच्छे हो, मेरा इतना ध्यान रखते हो, और हमने प्यार से पानी पिया, और मान लीजिए हमारी जेब में एक ट्रॉफी पड़ी है, कुछ भी चीज पड़ी है, हम उसको कहते हैं भाई तुम बहुत मेरा ध्यान रखते हो, तुम बहुत अच्छे हो, तो वो कुत्ता हुआ जाता कि देखो साहब ने मेरी कितनी इज्जत की, वो तो चला जाता और हम अपना काम कर लेते, करके आते और योग में बैठते तो हम उड़ जाते, क्योंकि हमें ना पीएन याद है, ना पीएन के साथ किया हुआ व्यवहार याद है, बल्कि उसकी दुआएं हमें आ रही हैं। साहब हैं तो इतने बड़े, लेकिन देखो कितना प्यार करते हैं, मैं जब भी जाता हूँ बहुत मीठा बोलते हैं, मैं जब भी जाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ मिल ही जाता है उनसे, हमेशा कुछ ना कुछ देते ही हैं। तो एक प्रकार से उसकी जो दुआएं आती तो वो दुआएं हमारी कर्म से हमें जो मिलती, वो हमारा कर्म क्या कहता कि आप उड़ो। जो कर्म है वो मनुष्य की रचना है, जैसे हमारे बाल बच्चे भी हमारी रचना है। तो अगर किसी का बालक डिफेक्टिव है, किसी का बच्चा लंगड़ा है, किसी का बच्चा पोलियोग्रस्त है, किसी का बच्चा अंधा है, तो ये जो डिफेक्टिव रचना है ये क्या करती है, ये माँ बाप को बांधती है। माँ घर से निकलने लगेगी, निकले कैसे, अरे घर में अंधा बच्चा है छोड़ के मैं नहीं जा सकती, लंगड़ा बच्चा है, पोलियो वाला बच्चा है, मैं नहीं जा सकती। तो डिफेक्टेड रचना अपने रचयिता को हमेशा बांधती है। अगर एक स्वस्थ बच्चा हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत ब्रिलियंट हो, तो वो क्या कहेगा, मम्मा आप कहीं भी जाओ मैं पीछे से घर भी संभाल लूंगा, पढ़ाई भी कर लूंगा, भूख लगेगी तो मैं फ्रिज से दूध भी पी लूंगा, आप मेरी चिंता मत करना। तो अगर वो रचना स्ट्रांग है, अच्छी है, तो वो रचना अपने रचयिता को फ्री कर देती है कि आप बेशक कहीं जाओ, मेरी चिंता मत करना। तो जैसे संतान मनुष्य की रचना है, ऐसे कर्म भी मनुष्य की रचना है। वो कर्म अगर शक्तिशाली है, पॉजिटिव है, तो हमें फ्री कर देता है कि आप जाइए। और अगर वो कमजोर कर्म है, नेगेटिव कर्म है, तो वो हमें बांध लेता है कि नहीं, मुझे छोड़ करके आप मत जाइए। तो मैं आत्मा योग में उड़ूं, मेरा योग शक्तिशाली हो और मेरा मन स्थिर हो, वो तब होगा जब मेरे सारे दिन के कर्म, एक एक कर्म इतना शक्तिशाली हो। चाहे देह का कर्म हो, मैं देह का काम करती हूँ तो बहुत उतावलेपन में करती हूँ, जल्दबाजी में करती हूँ, कोई चीज गिर जाती है, टूट जाती है, वो भी मुझे सारा दिन याद आएगी, अरे मेरा नुकसान हो गया, मेरी चीज गिर गई, तो ये भी कर्म डिफेक्टेड था, इसलिए टूटी हुई चीज बार बार याद आएगी। भले ही मैं मन को समझाऊं कि चीज बनी टूटने के लिए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान उसमें जाए। तो मैं मेरे देह के कर्म भी शांति से करूं, लोगों के साथ मैं लेन देन करूं, दो लोगों की याद आती है, या तो हम किसी की कोई चीज ले आए उसकी याद आएगी, अरे ले आए, उसको देनी थी, या कोई हमारी ले गया तो याद आती है, अरे वो मेरी चीज ले गया। तो बात केवल चीज की नहीं है, बात भाव की भी है। या तो हमने उसको कुछ ऐसा कह दिया कि वो हमें याद कर रहा है, या उसने हमें कुछ ऐसा कह दिया कि उसकी बात हमें बार बार याद आ रही है, तो अल्ड हो गए हम, उलझ गए। हमारी बातचीत ऐसी हो कि उसकी कही हुई बात हमारी स्मृति से फिसल गई और हमारी बात उसकी स्मृति से फिसल गई, और अगर याद भी है तो एक ऐसे तरीके से याद है कि उसको याद कर करके खुशी मिल रही है, या उसको याद कर करके एक रूहानी आनंद आ रहा है, या उस बात को याद करके वो परमात्मा की स्मृति उसके लिए सहज हो गई है। लेकिन हम बातों के जरिए, कर्मों के जरिए अगर कहीं भी इंटेंगल हो जाएंगे तो फिर ऊपर नहीं उड़ पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, बच्चे आपका कर्म योग है। और दूसरी बात बाबा ने कही, कर्म के साथ धर्म का संतुलन बहुत अनिवार्य है। कोई भी कर्म बिना धर्म के नहीं होना चाहिए। दुनिया के लोगों के जो कर्म हैं, वो कोड़ी के भाव जाते हैं, क्योंकि केवल कर्म है, उनके साथ धर्म नहीं। धर्म का अर्थ है धारणा। तो मेरे हर कर्म में शुभ भावना, कोई कैसा भी कर्म कर रहा है, लेकिन मैं मेरी भावनाओं को चीप ना होने दूं। जैसे आज बाबा ने मुरली में कहा कि जो सर्जन होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं। चाहे कोई कितना भी बीमार हो, कैसा भी उसको रोग हो, लेकिन सर्जन के सामने लाओगे तो वो घृणा नहीं करेगा कि इसको दूर ले जाओ, इसमें तो बदबू आ रही है, नहीं, वो उसकी उसकी शुभ भावना होगी, ये कैसे भी ठीक हो जाए। तो ऐसी हमारे सामने कैसे भी दृश्य आए, कैसे भी लोग आए, नेगेटिव लोग आए, अगर हमने नफरत कर ली तो कर्म बंधन, अगर हमने दुत्कार दिया तो भी कर्म बंधन, अगर हमने इग्नोर किया तो भी कर्म बंधन। अगर कर्म संबंध बनाना है तो उसका एक ही तरीका है, शुभ भावना और रहम की भावना। इसके अलावा और कोई भी भावना होगी तो हिसाब बन जाएगा। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जो कोई किसी से नफरत करता है तो उसको धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हम सोचते हैं नफरत करना तो एक छोटा सा अवगुण है, बड़े बड़े अवगुण तो काम, क्रोध, लोभ, लालच, बड़े बड़े, नफरत इतना बड़ा अवगुण थोड़ी है। लेकिन ये ईश्वरीय महावाक्य है साकार मुरली के, कि अगर कोई किसी से नफरत करेगा तो धर्मराज की कड़ी सजा खानी पड़ेगी। क्योंकि नफरत करते हैं तो भी वो चीज और वो व्यक्ति बार बार सामने आता है। जितनी आप नफरत करेंगे उतना ज्यादा वो आपकी आंखों के सामने बार बार आएगा। किसी ने हमको एक बहुत सुंदर आर्टिकल लिख के भेजा कि पहले मैं जब सड़कों पे जाती थी, और कोई गलियां तो भारत की गंदी है ही, पता ही है, ऐसे गंदगी वाली जगह देखती थी तो मेरा योगी नहीं लगता था। बार बार वही गली सामने आती थी, और कई लोगों की तो ऐसी नेचर होती है, ऐसा कोई दृश्य देखेंगे ना तो दूसरे को भी वो जब तक दिखा ना ले मानसिक रूप से उनको चैन नहीं आता। अरे भाई मैं अमुक गली से गुजरा, वहाँ ऐसा था, वहाँ ऐसा था, मतलब उस बात का विस्तार करेंगे जबकि वो फुल स्टॉप लगाने वाली बात थी। तो उस बहन ने लिखा कि एक दिन एकांत में बैठ के मैंने अपने मन को समझाया कि मैं इतना नफरत करती हूँ, मेरे नफरत करने से गंदगी मिट तो रही नहीं, तो क्यों नहीं मैं अपने मन को समझाऊं जैसे कबीर दास जी ने समझाया अपने मन को। तो उसने कहा मैंने अपने मन को समझाया कि ये जो गंदगी है यही फूल खिलाने के निमित्त है, गुलाब के फूल इस गंदगी से ही खिलते हैं, तो ये गंदगी गुलाब के फूलों को जन्म देने वाली है। तो आज के बाद जब भी मैं वहां से गुजरती हूँ तो मैं गंदगी ना देख के गुलाब के फूल देखती हूँ और मेरा भाव बदल गया। नहीं तो बार बार घर में आके भी मुझे ऐसे लगता था वोमिटिंग हो रही है, फिर वही दृश्य सामने। तो मैंने अपने मन को बदला, अब गलियां वही है, गंदगी वही है, लेकिन कौन बदल गया? मन बदल गया। तो अब जब जब उन सड़कों से गुजरती हूँ लगता है कमल के फूल खिले, गुलाब के फूल खिले, तो मेरा मन बहुत शुद्ध हो गया। तो मेरा कर्म कहीं भी उलझे नहीं, अगर उलझेगा तो वो याद आएगा, और याद इसीलिए आ रहा है या तो राग है, बहुत सुंदर चीज देख के वो भी याद आती है, वो राग हो गया, नफरत भी ना हो राग भी ना हो। इसके लिए मुझे बार बार अपने मन को समझाना पड़ेगा, ये जो मन है ना ये बच्चे जैसा है, आपके साथ आपका बच्चा चल रहा होता है ना तो वो क्या करेगा, वो रास्ते में मान लो कोई रेडी खड़ी है तो उसकी तरफ दौड़ेगा, कहेगा घोड़े, आप उसको फिर पकड़ोगे, फिर थोड़ा आगे जाएगा कोई फ्रूट बिक रहा होगा उसकी तरफ दौड़ेगा, बोलेगा मैंगो मैंगो, आप उसको फिर पकड़ोगे, आगे फिर कोई गुड़िया होगी बोलेगा गुड़िया गुड़िया। तो जो मनुष्य का मन है ये भी एक बच्चे जैसा है, जो चीज देखता है उसी की तरफ दौड़ता है, अच्छी होगी तो भी और बुरी होगी तो भी। लेकिन जैसे अपन बच्चे का कैसे हाथ पकड़ के रखते हैं, जाना नहीं है, इधर भी नहीं जाना उधर भी नहीं जाना, तो बुद्धि के द्वारा इस मन को हमें पकड़ के रखना पड़ेगा कि नहीं देखना, नहीं सोचना इसके बारे में, बाबा ने क्या बोला वो सोचो, ये तो रास्ते के साइड सीन है, ये तो रोज की देखी हुई चीज है, रोज इस रास्ते से गुजरता है, तेरे लिए कोई नई बात थोड़े। अपने मन को कहो कि अगर तुमको रोज बैंगन की सब्जी खिलाई जाए तो तुम कहते हो टेस्ट नहीं आता, और रोज इन्हीं दृश्यों को फिर बार बार क्यों देखते हो, इनमें क्यों बार बार टेस्ट आ रहा है, तो इनको एक बार देखे हुए दृश्य को दोबारा क्यों देखना चाहते हो, तिबारा क्यों देखना चाहते हो, एक बार देख लिया ना मालूम पड़ गया ना ये कैसी चीज है, अब सीधे चलो। मतलब जितना आप अंदर ही अंदर अपने मन से बात करेंगे, उसको समझाएंगे, समस्या का समाधान बाहर बिल्कुल नहीं है, समाधान भीतर है, समाधान एकांत में है, अपने आप से बात करने में है, और समाधान दृढ़ता में है। जब हम दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे ये नहीं देखना ये नहीं सोचना कुछ भी हो जाए, तो वो दृढ़ता काम करती है और दृढ़ता से ही सफलता मिलती है। ओम शांति।
खुशी और ही खींचे, आपकी और ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, आपके पास आते ही हम समा जाते, बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते, ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी अलौकिक पालना देकर झुलाए संग जो झूले, अतिंद्रिय सुख भरे वो दिन भुलाए हमको ना भूले, भुलाए हमको ना भूले, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, महकते फूल हैं अब भी यादों की इन किताबों में, आपके पास आते ही हम समा जाते, बाहों में आपकी याद आते ही हम तो खो जाते, ख्वाबों में आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद, आपकी